स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्तिवेदान स्वामी श्री प्रभुपाद की अपार कृपा से इस्कान भुज के गतिविधियों के अंतर्गत आज मीना माता जी के निवास स्थान के ऊपर प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत पुराण व्यास देव के द्वारा कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए प्रकट किया गया और पहले स्कंद श्रीमद् भागवत में हम पांचवें स्कंद अध्याय में देवऋषि नारद के द्वारा व्यास देव को कैसे भागवत के रचना करने की प्रेरणा दी गई ये प्रसंग पढ़ रहे हैं, इसका श्रवण वर्णन कर रहे हैं। कल हमने ये सुना था कि व्यास देव ने सरस्वती नदी के तट के ऊपर बद्री का आश्रम में जहाँ व्यास देव का स्थान है संप्राशन नाम के उनका आश्रम है बद्री छंड मंडिते जहाँ बद्री के बहुत सारे पेड़ है बद्री बेर के पेड़ को कहते हैं और भगवान का नाम बद्री नारायण है या बद्री विशाल है। जिसके कारण मैं असंतुष्ट हूं अब आज नारद जी उनको उत्तर दे रहे हैं उनकी असंतुष्टि का। तो अब नारद के शब्द हम पढ़ेंगे। ये नारद जी व्यास देव को उपदेश के अंतर्गत कह रहे हैं। श्री नारद वाच भवतानुदित्ता प्रायम यशो भगवतो अमलम येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम् खिलम्। श्री नारद जी कहते हैं भवता आपके द्वारा व्यास जी आपके द्वारा अनुदित शुद्ध पवित्र भगवान के यश का वर्णन नहीं किया है और ऐसा दर्शन कभी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता है इसलिए वो किसी काम का नहीं आप उसमें से संतुष्ट नहीं है। आप गुजराती में पढ़ ले तो ये सुन ले क्या है इसका अनुवाद पढ़ ले एक मिनट। हरे कृष्ण भगत, यही लोगों को पता नहीं है कि भगवान ऋषिकेश है, उसकी इंद्रियों की तृप्ति करने से हम सुखी होंगे, ये दुनिया को पता नहीं है। इसलिए दुनिया सारी खुशी के लिए इतनी सारी भागा दौड़ी कर रही है, फिर भी कोई खुश नहीं है। इसलिए नहीं है कि भगवान की इंद्रियों की तृप्ति नहीं है, तो सदुसे तो हमारी इंद्रियों की तृप्ति कैसे होगी, वो हमारी इंद्रियों के स्वामी है। और फिर प्रभुपद ने लिखा, ये भगवत गीता का केंद्र बिंदु है, भगवान ये मांग रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आप मेरी तुष्टि के काम के लिए काम करो तो आप संतुष्ट हो जाओगे। तो सारे वर्ण आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता। भगवान प्रसन्न तो जगत प्रसन्न, यस्य तुष्ट जगत तुष्ट, भगवान तुष्ट सारा जगत तुष्ट हो जाएगा। एक भगवान ने द्रौपदी के देगड़े का चावल खा लिया तो पूरे दुर्वासा के 10,000 शिष्य संतुष्ट हो गए। एक भगवान संतुष्ट तो पूरी दुनिया संतुष्ट, दुनिया को संतुष्ट करोगे भगवान संतुष्ट नहीं तो कोई संतुष्ट नहीं होगा। तो पहला कारण मुख्य बताया कि व्यासदेव आपके और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान ने अपने आप ही अपने से हमको बनाया है। अब आप इसको उदाहरण ऐसे समझ लिए, आपके अपने बच्चे हैं, घर परिवार है, तो बच्चे आपने बच्चों को पैदा किया है, तो आप क्या चाहते हैं, आपके बच्चे आपको आज्ञा में रहे, सुखी, आपके सुख के लिए विचार करें, आप बच्चों का सुख चाहते हैं और ये नाखून मेरे काम आएगा तो ठीक है, ये नाखून मैं काट के फेंक दो किसी काम का नहीं, नाखून शरीर से जुड़ा हुआ है तो काम का है, शरीर से अलग होने के बाद नाखून काटने से शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे भगवान का इतना ही हमारा संबंध है जितना हमारा शरीर का नाखून से है या बाल से, बाल काट देते हैं बेकार हो गए, जुड़े हुए हैं तो सुंदरता बना रखते हैं। तो भगवान का हम विभिन्न अंश से मतलब अलग किए जा सकते हैं और अलग करने के बाद सेवा नहीं कर पाते, तो साथ रहे से के सेवा कर सकते हैं। तो हम भगवान ने अपने आप को विस्तार किया है, भगवान ने अपने आप को विस्तार किया है जीव को हमको, क्यों के हमसे प्रेममयी सेवा लेने के लिए। भाई उन्होंने बनाया ही हमको इसलिए कि हम उसकी प्रेम से सेवा करें और उसको आनंद दें, उसने इसलिए बनाया। और हमने समझाया कि हम अपने सुख के लिए बने, असल में उसको सुख देने में हमको सुख अपने आप मिल जाता है। परिवार में ऐसे कहते भाई स्त्री पति को प्रसन्न करेगी तो अपने आप सुखी हो जाएगी, ये जीवन का नियम है, ऐसे भगवान को प्रसन्न करेंगे तो सब जीव अपने आप सुखी हो जाएंगे, सीधा सा रास्ता है। लेकिन उससे अलग होकर सुखी आने का प्रयास करेंगे तो कोई सुखी नहीं हो पाएगा, ऐसा व्यासदेव कहते हैं। प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं तात्पर्य में, ऐसे भगवान ने अपना ही विस्तार बढ़ा के जीवों को बनाया है ताकि जीवों से भगवान प्रेममयी सेवा को ले सके और उससे भगवान की संतुष्टि हो जाएगी तो जीव भी संतुष्ट हो जाएंगे। व्यासदेव जैसा बड़ा विद्वान जिन्होंने वेदों का विस्तार किया, वेदांत सूत्र जैसा दर्शन लिखा, लेकिन इन सब में उन्होंने किसी भी एक जगह पे भगवान के गुण का वर्णन नहीं किया है, उसके अंदर निराकार ब्रह्म का बहुत वर्णन किया है, परमात्मा का वर्णन किया है। और श्री प्रभुपाद लिखते हैं इस प्रकार निराकार ब्रह्म का और परमात्मा का वर्णन करने से आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। हम चाह रहे हैं आनंद, उसकी अनुभूति इन दोनों से नहीं होती है, क्योंकि आनंद तीसरा है, सप्त ब्रह्म से और चित्त परमात्मा से, लेकिन आनंद भगवान की अनुभूति से होता है। तो एक ही भगवान है, तीन स्तर पे उसको समझा जा सकता है, ब्रह्म परमात्मा और भगवान, जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला और सूर्य भगवान। सूर्य का प्रकाश है इसको कहते हैं ब्रह्म, भगवान कैसे सर्वव्यापक है, जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह है, प्रकाश को देख के भी सूर्य को मान सकते हैं। लेकिन सूर्य केवल प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं, लेकिन भगवान सर्वव्यापक है यह मानना आसान है, लेकिन कृष्ण सर्वव्यापक है यह मानना मुश्किल है। वो छोटा सा भगवान पूरा कैसे सब दुनिया का मालिक हो सकता है, ये मानने के लिए बहुत बड़ा दृढ़ विश्वास चाहिए शास्त्र के ऊपर, नहीं तो ऐसा मानना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं। इसलिए लोगों ने निर्णय बना लिया कि नहीं नहीं, ब्रह्म बड़ा होता है, भगवान छोटा होता है, लेकिन वो ब्रह्म के उसके ऊपर आश्रित है। भगवद गीता में लिखा ब्रह्मणो प्रतिष्ठा अहम्, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म तो मेरे प्रकाश को कहते हैं लोग, लेकिन ये बात मानना इतना मुश्किल है, इतना छोटा सा बच्चा ये कैसे भगवान हो सकता है, ये तो माखन चुरा रहा है, ये कैसे भगवान हो सकता है, ये तो गैया चुरा रहा है, ये कैसे भगवान हो सकता है। जिसका वर्ण करता है ऐसा भगवान नटवर है, नित्य किशोर नटवर, गोप वेश धर वेणु कर, हमेशा पगड़ी बांधी होती है, पीला पीतांबर पहनते हैं और पुष्पों की वैजंती माला पहनते हैं और हाथ में बांसुरी रखते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण का स्वयं रूप है। बाकी सब इनके विस्तार अवतार हैं, उनके अलग अलग रूप हैं, लेकिन असली भगवान का आदि कृष्ण का रूप है नित्य किशोर। बोलो नित्य किशोर, नटवर वेणु कर गोप वेश धर, ये चार पहचान है स्वयं भगवान श्री कृष्ण की। अब इसको ऐसे मानना आसान नहीं है, केवल शास्त्र के प्रमाण से और गुरु की कृपा से ये बात समझ में आ सकती है, नहीं तो निराकार ब्रह्म को भगवान मानना आसान है, परमात्मा मानना आसान है, लेकिन भगवान मानना इतना आसान नहीं। लेकिन भगवान मानने के बगैर आनंद का अनुभूति नहीं हो सकती, परमात्मा मानने से थोड़ी देर के लिए ध्यान लग जाएगा, शांति की अनुभूति होगी, लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं होगी। ब्रह्म मानने से ज्ञान का विस्तार हो सकता है, अपने आप को ज्ञानी मान सकते हैं, लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। तो यहां श्रील प्रभुपाद ने लिखा है ऐसे परम सत को ब्रह्म या परमात्मा मानने से आनंद की अनुभूति नहीं होती है, दिव्य आनंद का पता नहीं लगता है, क्योंकि वो तो केवल भगवान की अनुभूति से होता है। और इसके बाद दो लाइनों में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि व्यास देव जैसा विद्वान जिन्होंने वेदों का सार वेदांत सूत्र लिखा, उसको अध्ययन करने से स्वयं ही असंतुष्ट नहीं हुए, तो फिर उसको पढ़ने वाले संतुष्ट कैसे होंगे। जिन्होंने शास्त्र स्वयं लिखा, उसको बनाने वाला लिखने वाला शास्त्र, उसको पढ़ने के बाद संतुष्ट नहीं हुआ, तो उसको दूसरे पढ़ के संतुष्ट कैसे होंगे। और जब संतुष्ट नहीं था तो स्वयं व्यास देव को अपने वेदांत सूत्र के ऊपर टीका लिखने की प्रेरणा नारद जी ने दी और श्रीमद् भागवत के अवतार का ऐसे कारण बना। इसका मतलब व्यास देव भागवत की रचना नारद की प्रेरणा से करने के बाद संतुष्ट हो गया, क्योंकि भागवत के अंदर एक ही जगह पे विशेष रूप से भगवान की गुण रूप लीला धाम इसकी महिमा का वर्णन है। तो आज क्या व्यास देव की असंतुष्टि का मुख्य कारण क्या है, अथवा हमारी असंतुष्टि का मुख्य कारण संसार में क्या है। भगवान के गुण गा नहीं गाते, अपने गुण गाते हैं, भगवान की इंद्रियों की तृप्ति के लिए काम नहीं करते हैं, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए काम करते हैं। तो आज भी किसी को सुखी होना है, किसी को संतुष्ट होना है, तो दो काम करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए और भगवान की संतुष्टि के लिए काम करना चाहिए। इसलिए घर में भगवान का मंदिर बनाते हैं। जो घर में भोजन बनता है पहले भगवान को अर्पण कर देते हैं, तो भगवान संतुष्ट हो गए तो हमको प्रसाद मिल गया, हम भी संतुष्ट हो गए। अगर हम अपने लिए जैसे बाहर जाके खाते हैं तो वहां भगवान को भोग नहीं लगता है, तो बाहर खाने वाला पहले तो चिंता होती है क्योंकि पैसा जेब से निकलता है, उसी वक्त परेशानी शुरू होती है, 500 रुपया 300 रुपया गया तो आदमी ही खाने के बाहर आते ही परेशान होना शुरू होता है और फिर दिमाग में इधर उधर की बातें आने लगती है, क्योंकि पकाने वाले के दिमाग में जो परेशानी होगी वो हमारे उसके खाने में परेशानी आ जाएगी, अब पकाने वाले की परेशानी हमारे पास आ गई और इतनी चिंताएं उसके साथ आती हैं पीछे, क्योंकि वो प्रसाद नहीं है इसलिए, तो क्योंकि वो तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बनाया जा रहा है, ये भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए बना। हम किसके लिए बनाते हैं? भगवान को सुंदर स्वादिष्ट जो भोग लगाना चाहिए तो हमारे को प्रसाद मिलेगा तो हमारी संतुष्टि हो जाएगी। एक ही काम, ये दो काम इसलिए करने से, अब कहा जाए कि हम संतुष्ट कैसे हों, हम सुखी कैसे हों, तो भगवान को संतुष्ट और सुखी करने से हम सुखी हो जाएंगे। तो भगवान को सुखी और संतुष्ट कैसे करें? तो बहुत सरल है, बहुत अच्छा घर में जो आपको दिया है शुद्ध, वो भोग बना के भगवान को अर्पण कर दो और जब तक भगवान को भोग लगे तब बैठकर भगवान के गुणगान गा लो, भगवान का कीर्तन कर लो। 10 मिनट भगवान को भोग लगने में लगते हैं, उतनी देर भगवान का कीर्तन करो, बस दो काम कर लो, आपके जीवन में संतुष्टि और सुख आ जाएगा। और ये दो काम जीभा से होते हैं, खाते हैं जीभा से, चखते हैं और बोलते हैं जीभा से, और भगवत भक्ति जीभा से शुरू होती है। भक्ति शुरू करने के लिए कोई शास्त्र की जरूरत भी नहीं है, कोई ज्यादा आंखें बंद करके ध्यान करने की भी जरूरत नहीं है, जीभा से भगवान की भक्ति की जाती है। एक भगवान के नाम का उच्चारण करने से और एक भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से, तो ये दो काम करने से हम संतुष्ट हो जाएंगे। बैठे घर में तो थोड़ा भगवान के नाम का कीर्तन कर ले, इसका नाम ही कीर्ति गाना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान की कीर्ति है, इसको भगवान का कीर्तन कहते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, ये भगवान का कीर्तन है। तो ये भगवान का कीर्तन करना और भगवान की संतुष्टि के, भगवान किस बात में प्रसन्न होते हैं? तब वो भगवत गीता के 5वें अध्याय का आखिरी श्लोक पढ़ना चाहिए, भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञानत्वामां शांतिमृच्छति। अगर आपको शांति चाहिए और शांति के बाद क्या आता है? सुख। अशांतस्य कुतः सुखम्, जिसको शांति नहीं है वो सुखी कैसे हो सकता है? ये भगवत गीता के 2वें अध्याय का श्लोक है। इसका मतलब हमको चाहिए शांति, और शांति कैसे मिलेगा? प्रभुपाद जी कहते ये शांति का सूत्र है 5वें अध्याय का श्लोक, क्या है? भोक्ता, भगवान कहते हैं मैं हूं भोक्ता, मतलब प्रसन्न किसको करना चाहिए? मुझको करना चाहिए। भोक्ता का मतलब एंजॉयर अंग्रेजी में, भोक्ता। भोक्ता कौन है? भगवान कहते मैं हूं भोक्ता। बोला किस चीज को भोगते? भगवान बोला यज्ञ को भोगता। इसका मतलब हमको यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ भगवान को अच्छा लगता है। अब कौन सा यज्ञ करे? अब घी तो मिलता नहीं है, कहां से लाए? पंडित जी तो हाथ नहीं आता है, और मंत्र उच्चारण करने वाले लोग रह नहीं गए, तो क्या स्वाहा वाला यज्ञ केवल यज्ञ नहीं? भगवान के नाम के जप करने का नाम भी यज्ञ है। गीता में यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, जितने यज्ञ है उनमें जप नाम का यज्ञ मेरी विभूति है। तो बैठ के सुबह उठ के भगवान के नाम का जप करो, ये भगवान की प्रसन्नता हो गई, ये भगवान की प्रसन्नता का यज्ञ होगा। और दूसरा क्या यज्ञ? संकीर्तन यज्ञ, सब बैठ के आपस में कीर्तन करो। स्वाध्याय यज्ञ, कोई उठ के भगवत गीता को सुबह खोल के पढ़ लो, ये यज्ञ हो गया। कोई केवल घी और तिल डालने से स्वाह करने को यज्ञ नहीं कहते, सत्र यज्ञ होते हैं, शास्त्र का सुनना ये यज्ञ है। ये जो क्या करते हैं और क्या भगवान भोगते हैं, क्या भगवान को चाहिए? तपस्या। भोक्तारम यज्ञ तपस्या, हमें एक यज्ञ चाहिए एक तपस्या चाहिए, तो तपस्या कौन सी करनी चाहिए? ये बैठ के 1 घंटा कथा सुनना, ये तपस्या है। एकादशी का व्रत करना, ये तपस्या है। जन्माष्टमी का व्रत करना, ये तपस्या। तो तपस्या, 2 घंटे बैठ के भगवान का नाम जपना, ये भी तपस्या है। तो ऐसे तपस्या ये दोनों हमको करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते। अभी भगवान का नाम क्यों है, भगवान यज्ञ को क्यों भोगते हैं? सर्वलोक का महेश्वर, अरे भूत सबका मालिक वो है। आपने अपना घर बनाया है तो इसमें सुख आप लोगे ना, तो भगवान ने दुनिया बनाई है तो भगवान के सुख के लिए है ना। हमको बनाया है तो भगवान को अपने सुख के लिए बनाया है, तो हमको उसको सुख देना चाहिए ना। घर हमने बनाया है, दूसरा कोई सुख को थोड़ी लेगा। तो भगवान ने दुनिया बनाई है तो सब लोगों का महेश्वर है, सबका स्वामी वो है, तो जो स्वामी है वही सुखी होगा ना, तो उसको ही सुख देना है ना। ज्ञात्वा माम, जो जैसे जानता है मेरे को, फिर कहते हैं सुहृद सर्वभूतानां। ये है भगवान के नाते बोलने कि मैं सबका शुभ चिंतक हूं, सबके हृदय में सुहृद का मतलब सबके हृदय में बैठा हुआ हूं, दिल पर, दिल के अंदर बैठा हुआ हूं। मैं आपका बहुत शुभ चिंतक हूं, आपको सुखी देखना चाहता हूं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक होते हैं मित्र, आप मेरे काम आओगे तो मैं आपके काम आऊंगा। एक होते हैं संबंधी, तुम मेरे घर आओगे मैं तेरे घर आऊंगा। और एक होते हैं सुहृद, तुम आओ या ना आओ, तुम कछु करो या ना करो, लेकिन मैं तो तुम्हारा भला करूंगा। इसको बोलते हैं सुहृद। जैसे माँ सिर्फ सुहृद होती है, बच्चा रात मारे, बच्चा रात को जागता है तो माँ जागेगी, उसको सुलाएगी, खुद भूखी रहेगी लेकिन उसको खिलाएगी, इसको बोलते हैं सुहृद। जैसे माँ सुहृद होती है, ऐसे गुरुदेव सुहृद होते हैं। वो सब दुख तकलीफ संकट देख के भी अपने जिज्ञासु शिष्यों का मार्गदर्शन करने का प्रयास करते हैं। और असल में सुहृद है भगवान, तीन ही सुहृद है दुनिया में, और कोई सुहृद नहीं है, माँ, गुरुदेव, साधु और भगवान। जो ये जानता है कि भगवान हमारे शुभ चिंतक है, वही भोगता है हमारे यज्ञ और तप के, वही सब लोगों के स्वामी है, ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। और जिसको शांति मिल जाती है वो अपने आप सुखी हो जाता है। तो भगवान से, अब ये जानने से हम शांति कैसे होंगे, असल में भगवान के साथ शांति करनी है, दुनिया के साथ शांति नहीं करनी। लोग कहते हैं दुनिया में शांति चाहिए, असल में हमारे और भगवान के बीच में शांति होनी चाहिए। और वो शांति कैसे होती है, ये दूसरे अध्याय भगवद गीता का श्लोक है, अयुक्तस्य का भावना। जो भगवान से जुड़ा हुआ ही नहीं है उसके अंदर भावना कहां से आएगी, और जिसके अंदर भावना नहीं है कुतः शांति, उसके अंदर शांति कहां से आएगी, और जिसमें शांति नहीं है उसको सुख कहां से मिलेगी। तो असल में शांति के लिए भगवान से जुड़ना जरूरी है, भगवान से जुड़ने को योग कहते हैं। तो योग का शास्त्र है भगवद गीता। तो भगवान से कैसे जुड़ना चाहिए, सेवा के माध्यम से जुड़ना चाहिए। भगवान किसी से जुड़ना कैसे है, सेवा के माध्यम। जो आपके घर में है सेवा करते है, करता है, वो आपको अच्छा लगता है, सेवा करने वाला सबको अच्छा लगता है। तो भगवान की सेवा में भगवान से जुड़ना चाहिए। और सेवा कैसे करनी चाहिए, सेवा करने के लिए सेवा क्यों करें किसी की, तो क्या प्रेम के कारण। इसलिए दूसरी दृष्टि से यही प्रश्न जब किसी से पूछते हैं तो कहते हैं कि किसी से आप प्रेम करते हैं, ये कैसे परिचय देंगे, कैसे दिखाएंगे कि आप किसी से प्रेम करते हैं। माँ कहे कि बेटे से मैं प्रेम करती हूँ, या पत्नी कहे मैं पति से प्रेम करती हूँ, या भक्त कहे कि मैं गुरुदेव से प्रेम करता हूँ या भगवान से प्रेम करता हूँ, तो दिखाएगा कैसे, वही प्रेम कैसे दिखाओगे, कोई प्रमाण पत्र क्या है प्रेम का। कष्ट आए तो भी भगवान को नहीं छोड़े, ये प्रेम है। प्रेम किसी कारण से नहीं है, प्रेम स्वतः होता है, लेकिन सेवा जो है वो दिखाने का तरीका है। माँ बच्चे से प्रेम करती है तो सेवा करती हुई दिखेगी, पत्नी पति से प्रेम करती है तो सेवा करेगी, भोजन बनाएगी, कपड़े, हर एक चीज को व्यवस्थित रखेगी। ऐसे भक्त भगवान से प्रेम करता है तो सेवा करेगा। तो सेवा प्रेम के प्रदर्शन का माध्यम है, इसलिए भक्ति को कहते हैं प्रेममयी सेवा, प्रेम से भगवान की सेवा करना। तो ये सेवा जब तक भगवान से जुड़े, कैसे जुड़ेंगे, प्रेम की सेवा से, प्रेममयी भगवान की सेवा करने से जुड़ेंगे। तो कौन सी सेवा भगवान की करनी चाहिए, ये दूसरा प्रश्न उठता है। जो भगवान चाहते हैं वो करनी चाहिए ना। अब मैं कहता हूं मुझे प्यास लगी है पानी तो नहीं, कोई नहीं आप घी पी लो, अरे भाई बहुत अच्छा है आपकी स्वास्थ्य के लिए, मुझे प्यास पानी की नहीं आप घी पी लो, अरे भाई जो चाहिए वो देना चाहिए ना। जैसे भगवान कहते हैं मेरी सेवा में किसमें संतुष्ट हो जाऊंगा, मुझे प्रसन्न करने के लिए सरल साधन क्या है, बोला जो मैंने भगवत गीता में शिक्षा दी है जो श्रद्धालुओं को देता है उससे ज्यादा को ना कोई मुझे प्रिय था ना है ना भविष्य में होगा। अब भगवान को संतुष्ट करने का सरल साधन भगवान ने तथा बता दिया कि मेरी शिक्षाओं को श्रद्धालुओं तक पहुंचाओ तो आप मुझे प्रिय हो जाओगे। 12वां अध्याय भगवत गीता में 8वें श्लोक से लेके 9 से लेके 20-12 श्लोकों में हर श्लोक के पीछे भगवान कहते हैं वो भक्त मुझे प्रिय है, वो भक्त मुझे प्रिय है, वो भक्त मुझे अति प्रिय है। इसका मतलब भगवान को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है वो सब साधन भक्त को बताए गए। और ये श्लोक के अंदर है कि भगवान की संतुष्टि, भगवान के इंद्रियों की तुष्टि हमारी सुख और शांति का सूत्र है। तो ये जो कथा सुनते हैं ये भी भगवान को बहुत अच्छा लगता है। भागवत की तो महिमा में लिखा है कि जो कथा सुनने के लिए घर से निकलते हो तो आप एक आपके हृदय में भगवान एकदम लिखा है वहां तत्क्षणात उसी समय अवरोही होते रुक जाते हैं यानी मेरी कथा सुनने जा रहा है। बोले ऐसे कौन कर सकता है, बोले जिसके जीवन में पुण्य का सुकृति हुई है, सुकृति जन्म जन्म के सुकृति कैसे होती है, कभी तुलसी को पानी दे दिया, कभी गाय को रोटी दे दिया, कभी गंगा जी का स्नान कर लिया, दर्शन कर लिया, कभी गीता पढ़ लिया, इससे सुकृति हो जाती। ये सुकृति हमारे को भगवान की कथा के निकट लाती। तो जिनकी सुकृति का उदय होता है, और सुकृति होती कैसे, अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जब पाप नाश होते हैं तब और पुण्य उदय होते हैं तभी कहीं भगवान के भक्तों का संग होता है, ऐसे नहीं होता। अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। जो भगवान का दृढ़ वचन लेके नाम करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनके पुण्य नाश हो गए हैं और उनके पाप नाश हो गए हैं, पुण्य का उदय हुआ है। और पुण्य के उदय का अर्थ क्या है, पुण्य के उदय का अर्थ जीवन में भगवान के भक्तों का संग मिलना। किसी के जीवन में पुण्य हो गया है इसके से पता लगे कि उसको भक्तों का संग मिला है, इसका मतलब उसके जीवन में पुण्य उदय हुआ है। भगवान किसी से प्रसन्न है इसका कैसे पता लगे कि भगवान के भक्तों का संग भगवान ने दिया है, इसका मतलब भगवान प्रसन्न है। तो ये कसौटी है भगवान की प्रसन्नता की और पुण्य के उदय की कि भगवान अपने भक्तों का संग देते हैं जिसमें भगवान की गुणगान महिमा सुनने का हमको शुभ अवसर मिलता है। हरे कृष्ण। सो आज के इस श्लोक से व्यास देव को नारद जी के उपदेश का अर्थ हमको ये निकालना चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए और भगवान की संतुष्टि में हमारा सुख शांति संतुष्टि तृप्ति सब कुछ है। हरे कृष्ण। तो कृष्ण भावना अमृत संघ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि भक्ति के मार्ग में भगवान की प्रेममयी सेवा करना सिखाना और वो सेवा के लिए हरे कृष्ण महामंत्र जपना वो आरंभ करना चाहिए सबको। तो हमारी सबको करबद्ध विनती है कि जो भी यहाँ बहने आई हैं और ये हमारे भाई आए हैं जो जप रहे हैं सावधानी से आगे जपें, और जो पहली बार आए हैं उन सबको हम प्रार्थना करते हैं कि ये महामंत्र भगवान का श्री चैतन्य महाप्रभु श्री राधा कृष्ण का युगल स्वरूप ये धरती के ऊपर गोलोक का प्रेम धन लाए हैं और श्री प्रभुपाद ने ये विश्व में विस्तृत रूप से सरलता से सबके घर तक पहुंचाने का प्रबंध किया है कृष्ण भावना अमृत संघ के माध्यम से। सो हरे कृष्ण मंत्र का जप करके अपने जीवन को सफल कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है?
आपका बताया गया कि हृदय के अंदर दिल के अंदर भगवान है, भगवान को जुड़ लेते हैं, भगवान के साथ जुड़ने के लिए हमारे जो हृदय है उसके साथ बैठकर उसके साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए?
भगवान तो हमारे हृदय में, जब हम मानव,
वो बात सही है
नहीं, मानव क्या कुकर शुकर बनते तब भी हृदय में बैठा होता है,
तो
लेकिन उस वक्त उससे मिल नहीं सकते, उससे मिल नहीं सकते उन जूनियों में, केवल मानव जूनी में ये कर सकते, उससे केवल इस जूनी
एक घंटे बैठ कर उस सब को भूल कर जो अंदर है उसके साथ बैठ कर जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए?
जुड़ना चाहिए, इसका मतलब उससे जुड़ना चाहिए, इसका मतलब हम उससे अलग है, वो आत्मा है, हम आत्मा है।
देखो जो जहाँ ध्यान जाता है वहाँ आदमी जाता है, हमारा जो ध्यान है चित्त है वो संसार में है तो हम भगवान अंदर है, लेकिन हमारा जो चेतना है वो उसके साथ जब जुड़ेगी तब हमको उसको पता चलेगा,
बहुत अच्छा चलेगा, इसलिए हम कहते हैं
संसार में चित्त है तब को उसका पता नहीं चलेगा, है वो है सही है लेकिन उसका पता तब चलेगा जब उसके साथ हम जुड़ेंगे।
आपने दो शब्द कहे, हमारी चेतना जब उससे जुड़ेगी, इसलिए हमारी संस्था का नाम ये कृष्ण चेतना, जिसकी चेतना कृष्ण साथ जुड़े।
तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि उसके साथ बैठ, जैसे हम संसार में ध्यान रखते हैं तो संसार में हमारा दिल चित जाता है, ऐसे उसके साथ हमारा चित जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए?
तो उसका पता तो होना है, कौन उसकी पहचान तो है, मैं भाई शादी करूंगा, मैं पति के साथ रहूंगा, अरे पति है कौन पता तो करो पहले, पति का पता नहीं है, पति है कौन ये पता नहीं है, मैं पति के साथ सुखी रहूंगी, मैं घर बनाऊंगी, मैं पति के साथ, अरे पति है कौन,
वो पता तो है,
पता नहीं है किसी को,
पता नहीं है
कौन है, किसने कहा कि मैं दिल में बैठा हूं? मैं आपसे पूछता हूं, किसने कहां कहा है, कौन से शास्त्र में कहा है मैं दिल में बैठा हूं, कौन से शास्त्र में कहा, मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, मैंने कहा ना, तो कोई शास्त्र का प्रमाण तो मत पूछो ना,
शास्त्र में भी लिखा है,
कौन से शास्त्र
में भी लिखा है,
क्या गीता में, क्या किसने गीता बोली
ना,
नहीं गीता किसने बोली,
भगवान ने,
क्या नाम भगवान का, गीता बोलने वाले भगवान का नाम क्या है, हाँ तो कृष्ण के साथ बैठना है, ये बात क्यों नहीं करते हो सीधी, आप जो कहोगे किसने कहा है, वो कहते दिल में कहता है कृष्ण में बैठा हूँ, नहीं एक बात नहीं, कृष्ण भगवान है ये समझना मुश्किल है किसी को, यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं शादी करूंगा किससे, कौन भगवान, सब भगवान है, क्या तुम्हारे सब पति हैं क्या,
कृष्ण बोलो बराबर है लेकिन जो कृष्ण अंदर है,
वो जो कृष्ण अंदर है वही कृष्ण बाहर है, कोई दो कृष्ण नहीं है, एक ही है,
बाहर भी वही है अंदर भी वही है,
ये बात बहुत
जो है उससे हम जल्दी मिल सकते हैं, उसके साथ जल्दी अनुभव कर सकते हैं, जो हमारे साथ है उसका,
उसके लिए हृदय साफ करना पड़ेगा, और हृदय साफ करने के लिए भगवान के नाम का जप करने का नियम बनाना पड़ेगा,
करना पड़ेगा, हाँ तो करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे जप करेंगे और उसके साथ जुड़ेंगे तो उसका अनुभव होगा,
बराबर अनुभव होगा, ये बहुत सही है, हरे कृष्णा, धन्यवाद, ठीक है, धन्य, हरे कृष्णा, धन्यवाद भैया, आपका क्या नाम, नाम क्या आपका,